की भक्ति देवी की सामवेद भक्त मृंद की घोर प्रेमानंदा श्री श्री गोनताय की श्री श्री राधा राजभारी लालचा विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की ऑल ग्लोरी श्री सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु एंड श्री गौरंगा Hare Krishna. Speak in English or Hindi? Hindi? Hindi, Bob. Hindi, Hindi everybody understands. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Gyanti Mirandasya Gyananjana Shalakya Chakshuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namah Thoda Jor Se Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Vandeham Shri Guru, Shri Yuta Padakamlan, Shri Guru Vaishnavamsa, Shri Rupa Sagana Lagutam Tam Tam Sudevam Sadvetam Indrachetarevam Shri Radha Napadan Sahagana Lalita Shri Vijayam हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कंस कंसम तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वंचा कल्प कृपा Jai Shri Krishna Shri Advaita Shivaya Hare Krishna Hare Krishna To kal Madhavendra Puri ka tirbhav tithi thi Yesterday was Madhavendra Puri's appearance. They said, "Can the telephone ban karoge?" Or pichle kai dinon se aap log gor katha kar rahe ho na? Ha? To Madhavendra Puri ki katha ka bada gehra sambandh hai Chaitanya Mahaprabhu ji ke saath. To hum aaj Madhavendra Puri ki katha aapko sunayenge. Aur pehle main 3-4 shlok jo angrezi mein padhunga. फिर हिंदी में समझाऊंगा ठीक है सो आई रीड फ्यू वर्सेस इन इंग्लिश बिकॉज दैट्स द बुक आई हैव विद मी एंड श्री चैतन्य महाप्रभु प्रोसीडेड टू वर्ड जगन्नाथ पुरी विद फोर ऑफ हिज डिवोटीज एंड ही चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड द हरे कृष्ण महामंत्र विद ग्रेट ईगरनेस ईच डे श्री चैतन्य महाप्रभु फर्स्टली वेंट टू अ विलेज एंड कलेक्टेड अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ राइस and other grains for the preparation of prasad. There were many rivers on the way, and in each river there was a tax collector. They did not hinder the Lord, however, and he showed them special mercy. Finally, he reached the village of Ramana. The deity of Gopinath in the temple at Ramana was very attractive. Lord Chaitanya visited the temple and offered his obeisances with great devotion. When Sri Chaitanya Mahaprabhu offered his obeisances at the lotus feet of the Gopinath deity, the helmet of flowers on the head of Gopinath fell down and landed on the head of Chaitanya Mahaprabhu. When the deity's helmet fell upon his head. Sri Chaitanya Mahaprabhu became very pleased, and thus he chanted and danced in various ways with his devotees. All the servants of the deity were struck with wonder due to Sri Chaitanya Mahaprabhu's intense love, his exquisite beauty, and his transcendental qualities. Because of their love for Sri Chaitanya Mahaprabhu, they served him in many ways, and that night the Lord stayed at the temple of Gopinath. The Lord remained there because he was very eager to receive the remnants of sweet rice offered to the Gopinath deity. Having heard a narration from his spiritual master Ishwar Puri of what had once happened before. So, yahan aapne suna ki Chaitanya Mahaprabhu ek gaon se dusre gaon ja rahe the aur har gaon mein swayam bheek mang rahe the aur us samay musalmanon ka shasan tha Bharat mein, khas karke ईस्टर्न इंडिया में मुसलमानों का शासन था. तो रास्ते में यू हैव टू स्पीक अ लिटिल सॉफ्टर, यू आर स्पीकिंग टू लाउडली. तो रास्ते में आई मीन यू कैन ट्रांसलेट बट इट शुड नॉट कम टू माय इयर्स एंड द स्पीकर गेट्स डिस्टर्ब. तो रास्ते में कई जो चुंगी के अधिकारी थे, जैसे आप लोग आज भी चुंगी भरते हो ना, आप लोग यहां से मीरा रोड आते तो रास्ते में टैक्स भरना पड़ता है और चुंगी भरनी पड़ती है. तो उस समय भी चुंगी वाले थे, और क्योंकि मुसलमानों का शासन था तो चुंगी वाले भी सारे मुसलमान थे. पर हालांकि मुसलमान चुंगी वाले हिंदुओं को तंग करते थे, पर चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करके जा रहे थे किसी ने तंग नहीं किया. और चैतन्य महाप्रभु फिर पहुंचे रमना में. रमना में एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है श्री श्री राधा गोपीनाथ का. कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को भगवान ने खुद बनाया था. जब भगवान राम इस पृथ्वी पर थे तो एक दिन वो सीता को कह रहे थे कि मैं द्वापर युग में प्रकट होऊंगा कृष्णा के रूप में, तुम प्रकट होगी राधा रानी के रूप में. तो सीता ने पूछा हम कैसे देखेंगे कृष्णा और राधा के रूप में. तो फिर भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से एक मूर्ति बनाई राधा कृष्णा की, और कहा कि इस प्रकार से हम देखेंगे. और कहा जाता है कि जो मूर्ति है रमना के मंदिर में, बड़ी प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति है. यहां आपने पढ़ा आज के श्लोकों में कि महाप्रभु गांव गांव जा रहे थे, भीख मांग रहे थे और कीर्तन कर रहे थे बड़े उत्साह के साथ. और जो मुसलमान अधिकारी थे उन्होंने महाप्रभु पर कुछ अड़चन नहीं दिया, वो भी महाप्रभु का उत्साह देखकर बड़े प्रभावित हो रहे थे. और फिर महाप्रभु पहुंचे रमना के ऐतिहासिक मंदिर में. और जब वो रमना के ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचे, राधा गोपीनाथ के मंदिर में, तो उन्होंने वहां प्रणाम किया भगवान को. वो जब भगवान को प्रणाम किया तो भगवान के हाथ में जो एक हार था वो हार महाप्रभु पर गिर गया. तो महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए कि राधा गोपीनाथ की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, कि और भी उत्साह से नाचने लगे. और उत्साह से नाच रहे थे. और फिर महाप्रभु को माधवेन्द्रपुरी की कथा प्राप्त हुई. कल माधवेन्द्रपुरी का तिरुभव तिथि थी, और हम लोग मायापुर में शांतिपुर में गए थे. वहां हर साल शांतिपुर उत्सव के समय, माधवेन्द्रपुरी के तिरुभव तिथि के समय हजारों लोग, 50,000 से ज्यादा लोगों को प्रसाद खिलाया जाता. तो महाप्रभु फिर उनको याद आया कि मेरे गुरु ईश्वरपुरी ने ये कथा हमें सुनाई थी. ईश्वरपुरी थे चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेन्द्रपुरी. तो चैतन्य महाप्रभु जी के सिर पर जब वो हार गिरा राधा गोपीनाथ का, वो इतने प्रसन्न हुए, नाचने लगे, और फिर उन्होंने उस लीला का समाधान किया। तो माधवेंद्र पुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त थे। 24 घंटे उनके मन में एक ही भाव था, हरे कृष्णा भगवान के नामों को उच्चारण। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, कभी नहीं मांगा किसी से। अगर किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेते थे, और अगर किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया तो भूखे रहते थे। तो माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन की परिक्रमा की थी, और गोवर्धन की परिक्रमा करने के पश्चात गोविंद कुंड में, आप लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा की है, कितने भक्तों ने की है? तो रास्ते में एक स्थान आता है गोविंद कुंड, वहां एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करो तो जब आप गोविंद कुंड में पहुंचोगे तो पांडव आपको बताएंगे ये है माधवपुरी की बैठक, कि मतलब माधवपुरी यहाँ बैठे थे। तो माधवपुरी वहां थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो एक बहुत ही सुंदर ग्वाला इधर आया। ग्वाला ने कहा, माधवेंद्र पुरी तुम मुझे भूखे और प्यासे नजर आते हो, तुम जरा ये दूध पी लो, मैं इस मटके में आपके लिए दूध लाया हूं, और आप दूध पी लो, और मैं लौटता हूं गायों का दूध निकालकर मटका लेने के लिए। माधवेंद्र पुरी ने पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूं? तो उस ग्वाले ने कहा, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं जा सकता, और मेरे गांव की औरतें जब कुएं से पानी लेने जा रही थी तो उन्होंने देखा आपको, अंदाजा लगा लिया आप भूखे हो। तो चिंता मत करो, दूध पियो, मैं लौट रहा हूं मटका लेने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी दूध पी लिया, राह देखी कि मटका लेने ग्वाला आएगा, और माधवेंद्र पुरी ने इतना खूबसूरत ग्वाला कभी देखा नहीं था, इतना खूबसूरत पुरुष कभी देखा भी नहीं था। तो उस ग्वाले की खूबसूरती देखकर वो इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत बालक इस पृथ्वी पर कहां से आया है। तो राह देख रहे थे कि ग्वाला लौटेगा मटका लेने के लिए, पर कोई नहीं लौटा। तो माधवेंद्र पुरी को हल्की सी नींद आ गई। जब नींद आई तो वो ही ग्वाला सपने में आया। उस ग्वाले ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें एक और सेवा देना चाहता हूं, मुझे दबाकर छुपाया हुआ है इस स्थान में गहराई पर, वहां जाओ मुझे वहां से निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरी स्थापना करो। जब भगवान कृष्ण के एक ग्रेट ग्रैंडसन थे वज्रा, उन्होंने गोपाल की मूर्ति की स्थापना की थी। पर जब मुसलमानों का शासन शुरू हुआ उत्तर भारत में, तो कई जगह तो पुजारियों ने मूर्ति को छुपा दिया नीचे खोदकर कि कोई देख नहीं पाए, और कई जगह मुसलमानों ने वो मंदिरों को तोड़ दिया। जैसे मदन मोहन टेम्पल इतना ऊंचा था, उसकी 3 मंजिला औरंगजेब ने तोड़ दी थी, और कई मूर्तियों को उठाकर जयपुर ले गए थे। इसे जयपुर का दूसरा नाम है गुप्त वृंदावन। जयपुर में कई ऐतिहासिक मूर्तियां हैं जिनकी पूजा गोस्वामी ने की थी, और बड़ी प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तियां हैं। तो माधवेंद्र पुरी ने अगले और माधवेंद्र पुरी ने सपने में देखा कि वही ग्वाला जिसने उनको दूध पिलाया था वही ग्वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो इतने शर्मिंदे हुए। क्यों शर्मिंदे हुए? उन्होंने भगवान से सेवा ले ली थी, ही हैड एक्सेप्टेड सर्विस फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान आए थे ग्वाले के रूप में, उनको दूध पिला दिया, तो माधवेंद्र पुरी के मन में एक ये लज्जा थी, मैंने भगवान से सेवा ली। जो ऊंचे कोटि का भक्त होता है वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, कुछ लेना नहीं चाहता। ये है अन्या बिलासता शून्यम, ये शुद्ध भक्ति का वर्णन। अक्सर हम धर्म के नाम पर जुड़ते हैं, हमको भगवान से हर सुख चाहिए, है ना, धन चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, अमेरिका की टिकट चाहिए, और अगर कुछ नहीं मिले तो भक्ति का क्या लाभ? हमने दीक्षा भी ले ली, सोलह माला भी करते हैं, और हमारे देखो बाकी लोग इतना धन कमाने, हम नहीं कमाने, भक्ति का क्या फायदा हुआ? तो हम कई बार तो भक्ति में जुड़ते हैं अनेक भौतिक विचारों के साथ, पर भागवत में शुद्ध भक्ति पर बल दिया गया है। तो माधवपुरी शर्मिंदा हुए कि उन्होंने भगवान से सेवा स्वीकार किया है, और अगले दिन सुबह गोवर्धन के सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों को बुलाकर उन्होंने अपने सपना सुनाया। उन्होंने जब सपना सुनाया, सब गांव वालों ने कहा चलो हम चलकर देखते हैं सपना सत्य है या नहीं। पर जिस स्थान में गोपाल की मूर्ति को छुपाया हुआ था उस स्थान में ऊपर झाड़ियां भी उग गई थी, क्योंकि पुजारी लोग चाहते नहीं थे कि मुसलमानों को पता लगे कहां छुपाया है मूर्ति को। तो सब गए बड़ी बड़ी कैंची के साथ, सब झाड़ियों को काटा, फिर खोदा खोदा खोदा, और खोदा तो क्या मिला? वो गोपाल का विग्रह। और फिर वो विग्रह इतना भारी था कि सबको मिलकर उठाना पड़ा। ऐसे तो अब विग्रह को एक आदमी उठा सकता है या दो आदमी, पर वो गोपाल का विग्रह बहुत भारी था, इट वाज वेरी हैवी, सो कईयों को मिलकर उठाना पड़ा। तो एक दिन के अंदर माधवेंद्र पुरी ने मूर्ति स्थापना कर दी। हम लोग जब इस्कॉन मंदिर खोलते हैं, मूर्ति स्थापना की योजना बनाते हैं, हमें दो दो महीने पहले काम शुरू करना पड़ता है। हमें सिंहासन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। माधवेंद्र पुरी ने गोवर्धन से एक बड़ा पत्थर लिया, वो पत्थर का सिंहासन बनाया और गोपाल की स्थापना की। नौ अलग अलग लोटों में अनेक चीजें लाए, और फिर 900 मटके में अलग पानी लाए गंगा जल, और बहुत धूमधाम से अभिषेक किया। किसका? गोपाल का। गोपाल मूर्ति तो दबी हुई थी नीचे, तो उनको पहले तो स्नान करवाया मूर्ति को निकालने के लिए, फिर जब स्थापना का समय आया जब फिर उनका मसाज किया, फिर अभिषेक किया, और बड़े धूमधाम से गोवर्धन के जितने गृहस्थ लोग थे सब जुड़े उसके साथ, सब जुड़े और सब ने सहयोग दिया। किसी ने गाय दान में दी, किसी ने खेती दान में दी, और थोड़े समय में ही गोपाल विग्रह बहुत धनी बन गया। वो सारी जमीन, क्योंकि कहा जाता है आज भी जो वृंदावन में मंदिर हैं, जो मंदिर जमीनें हैं उनके मालिक कौन है? परम भगवान मालिक हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ विग्रह की स्थापना की। कई साल पूजा चलते गई, दो बंगाली ब्राह्मण आए थे, दो बंगाली वैष्णव, उनको माधवेंद्र पुरी ने ब्राह्मण दीक्षा दी, और फिर ठाकुर जी की सेवा चलते गई। फिर एक दो साल बाद माधवेंद्र पुरी को फिर से सपना आया, और उस सपने में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं बहुत आभारी हूं, मेरी ओब्लाइज टू यू कि तुमने मेरी स्थापना की थी धूमधाम के साथ, एक दिन में पूरा स्थापना कर दी। और मुझे तो माधवनपुरी ने गोपाल की स्थापना की थी गोवर्धन में, तो माधवनपुरी पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है और मुझे थोड़ा चंदन ला के दो, चंदन लगाओगे तो शरीर में ठंडा हो जाएगा। भगवान अपने भक्ति परीक्षा ले रहे थे। तो माधवनपुरी को सपने में भगवान ने आदेश दिया मैंने चंदन लेकर आओ। तो ये मंदिर था गोपाल में, चंदन लेने के लिए माधवनपुरी को उड़ीसा आना था। और जैसे ही भगवान ने सपने में कहा, माधवनपुरी ने तुरंत ही तैयारी की चंदन लाने के लिए। उन्होंने कई ब्राह्मणों को दीक्षा दी, उनको गोपाल के विग्रह की देखभाल की जिम्मेदारी दी और माधवनपुरी चले कहां जाने के लिए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी मंदिर जाने के लिए चले, क्या चंदन लाने के लिए। जब और ये पूरी यात्रा उन्होंने की पैदल, आजकल तो आपको कुछ बोला जाए इधर जाओ प्रचार के लिए मोटर चाहिए, नहीं तो प्रचार कैसे होगा, तो ये सुविधा चाहिए। तो माधवनपुरी की जब भगवान ने कहा चंदन लेकर आओ, उन्होंने कुछ ना मोटर मांगी, ना हवाई जहाज की टिकट, ना गाड़ी की टिकट, वो पैदल चले। अंदाजा लगाओ 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना भगवान की भक्ति के लिए। ये भाव हमारे में होना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए हमें कठिनाई का पालन भी करना पड़े हमें उसे डरना नहीं चाहिए। नहीं आप भक्ति करेंगे अगर आपको ये सुविधा मिलेगा ये सुविधा मिलेगा ये सुविधा, फिर एक प्रकार का व्यापार हो जाता है भगवान से। तो माधवनपुरी बिना हिचके हुए विदाउट हेसिटेशन वो आए जगन्नाथपुरी की तरफ भगवान के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो माधवनपुरी पहुंचे फिर रेमुना के मंदिर में, जैसे मैंने कहा ये राधा गोपीनाथ की मूर्ति की स्थापना बहुत ही प्राचीन समय से हुई है। और माधवनपुरी जब रेमुना में पहुंचे, रेमुना में भगवान को जो भोग लगाया जाता था शुरू से, बड़ा सुंदर ऊंचे स्टैंडर्ड का भोग, जैसे हम भी इस्कॉन में एक दूसरे से सीखते हैं। अगर कोई भक्त अच्छा प्रचारक है तो वो ट्रेनिंग देता है दूसरों को अच्छा प्रचारक बनने के लिए, अगर कोई अच्छी रसोई बनाता है तो दूसरों को शिक्षा देता है रसोई कैसे बनाने। जैसे मायापुर में अभी डीटी वर्शिप का इंस्टीट्यूट खुला है, तब भक्त सारे विश्व से आते हैं वहां भगवान का श्रृंगार भोजन वगैरह सीखने के लिए। तो माधवनपुरी जब पहुंचे कि राधा गोपीनाथ के मंदिर में, तो उनके मन में यह भाव था कि अगर मुझे यहां ये वहां का, तो उन्होंने पुजारियों से पूछा आपको भगवान को क्या भोग लगाते हो, क्या क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो। पर उस समय भी जो खीर भगवान को खिलाई जाती थी, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिरों में आपके राधा राजपेरी मंदिर में भी मंगल आरती में भगवान को खीर खिलाई जाती है, हाँ कभी आपने चखा है तो ये खीर खिलाई जाती है। तो रेमुना के मंदिर में जो खीर खिलाई जाती थी उसको अमृत केली कहा जाता है। अमृत केली का अर्थ है जो अमृत स्वर्ग से आ रहा है। तो ये जो खीर बनाई जाती है, उस समय बनाई जाती थी राधा गोपीनाथ के लिए, उसका टेस्ट ऐसे था जैसे स्वर्ग से बनकर आ रही है। तो माधवनपुरी जब रेमुना में पहुंचे राधा गोपीनाथ के मंदिर में, तो उनके मन में भावना हुई कि अगर मुझे ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं फिर गोवर्धन में लौटकर अपने गोपाल के लिए भी ऐसी खीर बनाऊंगा। पर ये भावना जब प्रकट हुई उस समय भगवान को भोग लग रहा था, और जब आनंद गौरी पुरी को पता लगा कि मेरे में यह भावना थी चखने की, क्योंकि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे और उस समय भगवान को भोग लग रहा था, तो बड़े शर्मिंदा हुए और कुछ चखे बिना चले गए बाजार के बीच में जप करने के लिए। भगवान ने अपनी एक और अद्भुत लीला प्रकट की। जैसे हम भक्त लोग भगवान को रोज भोग लगाते हैं, जब माधवनपुरी ने गोपाल की स्थापना की थी गोवर्धन में, तो पूरे गोवर्धन ब्रज में सब घरों में लाए थे बनाकर प्रसाद, सबने प्रसाद माधवनपुरी ने इन सब का प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पण किया, भगवान ने खा लिया। भगवान ने कैसे खाया? नेत्रों से, कानों से। जो मायावादी विचार के लोग हैं वो कहते हैं, देखो ये मूर्ख वैष्णव कहते हैं भगवान ने खा लिया, थाली तो वैसे के वैसे भरी हुई है। हम भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे अभी 8 बजे आपका मंदिर बंद हो गया था, आधा घंटा भगवान खाते हैं, फिर हम थाली को निकालते हैं, फिर वो प्रसाद बांटते हैं, तो हम कहते हैं भगवान ने खा लिया। तो मायावादी विचार के लोग कहते हैं, देखो इन मूर्ख लोगों को, हम जब खाते हैं खाली 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 हो जाती है, भगवान जब खाते हैं थाली भरी हुई रहती है, तो यह हमारा उल्लू बना रहे हैं भगवान ने खा लिया। भगवान ने कहाँ खाया? तो भगवान कैसे खाते हैं? भगवान खाते हैं अपने नेत्रों से और कानों से। ब्रह्मा जी ने कहा है, अंगनी अन्यस्य सकलेन्द्र वृत्ति बनती, भगवान किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। आप केवल मुंह से खा सकते हो, भगवान आंखों से खा सकते हैं, भगवान कानों से खा सकते हैं। भगवान जब कहते हैं सृष्टि का निर्माण हो, तो सृष्टि का निर्माण हो जाता है। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। तो माधवनपुरी चखे बिना बाजार में चले गए जाप करने के लिए। तो भगवान ने एक और अद्भुत लीला प्रकट की। गोपीनाथ जी ने एक खीर का प्याला जो अर्पण किया था वो छुपा कर पर्दे के पीछे रख दिया। जैसे आप देखते हो आपके मंदिर में दरबार है, द्वार के पीछे पर्दा है, पर्दा के पीछे भगवान है ना। तो बड़ा गोपीनाथ जी ने एक खीर जो सुबह अर्पण की थी, क्योंकि माधवनपुरी की इच्छा थी खीर चखने की, और चखे बिना वो चले गए, क्योंकि मन में ये भाव आया मैंने मेरी इच्छा थी। ये कई बार हम सोचते हैं, हम भक्त कहते हैं हम यही सेवा करेंगे और कोई सेवा नहीं करेगा, नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज माया। हम कहते हैं नहीं, हम सेवा करेंगे पर सिर्फ यही सेवा, और हमको कोई सेवा नहीं चाहिए, ये माया है। हमारा भाव होना चाहिए जो भगवान की इच्छा है वो हमारी इच्छा, ये नहीं जो हमारी इच्छा वो भगवान की इच्छा। तो माधवेंद्रपुरी शर्मिंदा हुए थे कि उन्होंने खीर चखने की भावना थी। तो भगवान ने अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया। और भगवान ने उस मंदिर के ब्राह्मण पुजारी को कहा सपने में, मैंने एक खीर का प्याला छुपाया है पर्दे के पीछे, तुम इस खीर के प्याले को लेकर बाजार में जाओ, वहां एक माधवनपुरी नाम का प्रसिद्ध भक्त बाजार में जाप कर रहा है, उसको एक खीर का प्याला देना। पुजारी को जब ये सपना आया वो आश्चर्य हो गए, भगवान ने खीर का प्याला छुपाया चुराया है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो पुजारी उठे, स्नान किया, भगवान को जगाया। जैसे आप लोग मंगल आरती में 4:30 बजे आते हो, पर पुजारी लोग तो यहाँ 4:45 बजे भगवान को जगा देते हैं। जब वो गया मंदिर, उसने देखा हाँ सचमुच रियली वो खीर का प्याला था उधर। तो पुजारी सोचने लगा कौन है ये सौभाग्यशाली माधवनपुरी, वो जानते नहीं थे माधवनपुरी कौन है, जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो माधवनपुरी को ढूंढने के लिए एक पुजारी बाजार में गए, यहाँ कोई माधवनपुरी नाम का कोई व्यक्ति है Is there anyone here by the name of Madhavendra Puri? तो माधवेंद्र पुरी ने सुना उनका नाम पुकारा जा रहा, उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। फिर उस पुजारी ने कहा तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। जब माधवेंद्र पुरी को पता लगा कि भगवान ने खीर का प्याला चुराया और छुपाया और उन्हें अभी भेजा है, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो नाचने लगे खुशी में, इतना नाचे खुशी में, और फिर खीर खाई। फिर माधवेंद्र पुरी ने वो डोना था, हाँ डोना होता है ना, डोना नहीं वो मिट्टी का लोटा क्या बोलते हैं, हाँ कसोरा था। तो उसको फिर माधवेंद्र पुरी ने थोड़ा अपनी धोती में लपेट लिया, तो रोज चखते थे एक अलग अलग कसोरे को। तो पूरे शहर में खबर फैल गई कि इस शहर में कोई भक्त है माधवेंद्र पुरी, जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा। तो जहां भी माधवेंद्र पुरी जा रहे थे वहां भीड़ हो जाती थी हजारों लोगों की। जैसे आज के कलयुग में अगर कोई फिल्मी कलाकार आ जाए इधर तब भीड़ हो जाएगी, अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी आ जाए सचिन तेंदुलकर सब भीड़ आ जाएगी, हम सब मारा मारी करेंगे कि नहीं। एक समय वो जेल में गए थे, वहीं फिल्मी कलाकार आई थी मंदिर के उद्घाटन के लिए, तो इतनी भीड़ आ रही थी मंदिर देखने नहीं फिल्मी कलाकार को देखने। तो ये है कलयुग के देवता, फिल्मी कलाकार, क्रिकेट के कलाकार। उस समय समाज की स्थिति जरा ज्यादा सुधरी हुई थी तो संतों को आदर देते थे। तो जहां भी माधवेंद्र पुरी जाते थे वहां बहुत भीड़ हो जाती थी, सब कहते देखो ये वो प्रसिद्ध भक्त है। तो माधवेंद्र पुरी को ये अच्छा नहीं लगा। बौद्धिक समाज में तो हम चाहते हैं सब हमारी तारीफ करें, पर जो शुद्ध भक्त है वो तारीफ नहीं चाहता, वो खुशामद नहीं चाहता, वो चमचागिरी नहीं चाहता। तो माधवेंद्र पुरी को अच्छा नहीं लगा, तो जगन्नाथपुरी और रेमना छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने उनका सहयोग दिया, उनको चंदन दिया 80 पाउंड, 80 पाउंड चंदन और 12 पाउंड कैम्फर लेकर जगन्नाथपुरी चले था जगन्नाथपुरी से गोवर्धन जाने के लिए। और क्योंकि रास्ते में मुसलमान चुंगी वाले थे तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने एक पत्र दिया कि ये चंदन हमने दान में दिया है। तो आज भी ये रिवाज चलता है, हमारे जब विदेशी भक्त आते हैं भारत में धोती कुर्ता सब मृदंगा खरीदते हैं तो मंदिरों से चिट्ठी ले लेते हैं दिस इज डोनेटेड बाय इस्कॉन बॉम्बे। उस जमाने में यही सुविधा थी। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने घंटी बज गया, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने छुट्टी दिया था। तो वापसी में तो माधवेंद्रपुरी 80 पाउंड चंदन खुद उठा रहे थे अपने कंधों में और कैम्फर और ये लेकर जगन्नाथपुरी से चले, और रास्ते में रेमुना में रुके। रेमुना में वही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि राधा गोपीनाथ का, एक रात के लिए रुके। तो वहां माधवेंद्रपुरी को फिर से एक सपना आया, और इस सपने में भगवान ने आदेश दिया, भगवान गोपाल थे उनके विग्रह गोवर्धन में और गोपीनाथ थे विग्रह रेमुना में। तो भगवान गोपाल ने कहा मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरे आदेश के अनुसार इतनी लंबी यात्रा की मेरे लिए चंदन लाने के लिए, मेरे में और गोपाल गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो यही चंदन तो हम मेरे ऊपर लगाने के बजाय गोपीनाथ को लगा दो, क्योंकि इसके पीछे एक कारण था। भगवान ने ली थी माधवेंद्रपुरी की परीक्षा, जाओ चंदन लाओ मेरे लिए, और भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने 1500 किलोमीटर की यात्रा की चंदन लाने के लिए। जब उन्होंने चंदन इकट्ठा कर लिया तो भगवान ने देख लिया कि यह परीक्षा में सफल हो गया है। और क्योंकि रास्ते में और मुसलमान अधिकारी थे जो कि हिंदू संतों को तकलीफ दे रहे थे, भगवान की इच्छा नहीं थी कि माधवेंद्रपुरी को कष्ट पहुंचे, तो भगवान ने अपने भक्त की सुरक्षा के लिए और देखा कि ये परीक्षा में सफल हुआ है, भगवान ने क्या कहा, तुम ये चंदन गोपीनाथ को लगा दो। तो अगले दिन सुबह माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों को ये सूचना दी कि 80 पाउंड चंदन मैं तो ले जा रहा था गोपाल के लिए, और गोपाल ने मुझे कहा है जग गोपीनाथ में लगा दो, और मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो पुजारी तो बड़े खुश हुए, अगर कोई आकर यहाँ कहे 80 पाउंड चंदन लो राजा राजभरे के, हाँ राम रूप यू बी हैप्पी, somebody comes up and says here is 80 pound for राजा राजभरे चंदन, तो माधवेंद्रपुरी बड़े गोपीनाथ के पुजारी बड़े खुश हुए। फिर माधवेंद्रपुरी ने दो आदमियों को थनका देकर रखा चंदन को पीसने के लिए, फिर माधवेंद्रपुरी ने खुद वहां रहकर भगवान को चंदन लगाया 3 हफ्तों के लिए, और जब से ये चंदन यात्रा का उत्सव शुरू हुआ है, ये चंदन यात्रा का उत्सव जो हम मनाते हैं, जैसे वृंदावन में तो चंदन यात्रा के वाले दिन भगवान को बिल्कुल श्रृंगार ही नहीं, कोई वस्त्र नहीं पहनाते, सिर्फ चंदन से शरीर को देख सकते हैं। तो फिर ये चंदन यात्रा का उत्सव जब से शुरू हुआ है, तो माधवेंद्रपुरी ने खुद चंदन लगाया भगवान को 3 हफ्तों के लिए, और जब से ये चंदन यात्रा उत्सव चल रहा है हम बॉम्बे में भी मनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए थे माधवेंद्रपुरी की एक कथा सुनकर। तो माधवेंद्रपुरी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, जब वो निकले थे वृंदावन से उड़ीसा के लिए तो रास्ते में वो आए थे शांतिपुर में, शांतिपुर में उनका परिचय हुआ था अद्वैताचार्य के साथ, और अद्वैताचार्य वैसे तो भगवान के अवतार हैं। अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी की भक्ति से इतने प्रभावित है कि अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा भी ली। माधवेंद्रपुरी के कई शिष्य थे, इनमें सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे ईश्वरपुरी और अद्वैताचार्य। तो माधवेंद्रपुरी ने फिर अद्वैताचार्य को दीक्षा दी, और जीवन माधवेंद्रपुरी के कई शिष्य थे जिनमें एक शिष्य था जिसका नाम था रामचंद्रपुरी, और एक शिष्य था जिसका नाम था ईश्वरपुरी। रामचंद्रपुरी जो थे उनमें वैष्णव निंदा की बहुत आदत थी, वैष्णव की निंदा करते थे, इसमें ये कमी है ये कमी है ये कमी है। जब सन्यासी महात्मा आते थे जगन्नाथपुरी में तो रामचंद्रपुरी उनके सामने पहुंच जाते थे बड़ा प्रसाद लेकर, प्रसाद की बड़ी थाली लेकर। तो सन्यासी लोग कहते थे हम तो सन्यासी हमें इतना नहीं खाना चाहिए, हमको तो थोड़ा दो। अरे जगन्नाथ जी के प्रसाद का अपमान कर रहे हो, ये तो जगन्नाथ का महाप्रसाद है खाओ। जब वो खाते थे फिर लोग कहते थे देखो ढोंगी सन्यासी, सन्यास लिया है दुनिया को दिखाने के लिए और खाते हैं इतने गृहस्थ से भी ज्यादा। तो एक दिन रामचंद्रपुरी गए चैतन्य महाप्रभु जी के कमरे में, गर्मी का मौसम था, गर्मी में चींटियों को भी गर्मी लग जाती है, तो कई चींटियां लकड़ी के फर्श में घूम रही थी। तो रामचंद्रपुरी कहने लगा लगता है हमारे सन्यासी ने कल बहुत मीठा खाया है, कि मीठा खाओ तो मीठा गिर जाए तो फिर चीटियां घूमने लगती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इतनी गंभीरता से स्वीकार किया कि उन्होंने खाना ही लगभग बंद कर दिया, चैतन्य महाप्रभु जी के जो सेवक थे गोविंदा और स्वरूप दामदर, उन्हें इतना क्रोध आया कि रामचंद्रपुरी के आरोप आलोचना के कारण महाप्रभु ने खाना खाना बंद कर दिया है लगभग। तो ये रामचंद्रपुरी में भक्तों में कमी निकालने की आदत थी। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो कह रहे थे, हे भगवान, मेरा जीवन असफल रहा, मैंने आपके प्रति बिल्कुल सेवा नहीं की, शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनमें सब गुण होते हैं, हम क्या सोचते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है। कृष्णदास काविराज जी कहते हैं कि अगर मेरा आप नाम भी लोगे आपके सारे गुण मिट जाएंगे, मेरा नाम भी मत लो। हमारी क्या स्थिति है, हम हमेशा चाहते हैं हमारा नाम लिया जाए, है ना। तो माधवेंद्रपुरी बड़ी विनम्रता से ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरे में भागवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो वहां उनके शिष्य रामचंद्रपुरी बैठे हुए थे। तो रामचंद्रपुरी कहने लगे, आप कृष्णा का क्यों सोचते हो, भगवान का क्यों नहीं सोचते, भगवान का सोचोगे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो माधवेंद्रपुरी को इतना क्रोध आया ये सुनकर कि उनका शिष्य कह रहा है ब्रह्मांड का चिंतन करो, उन्होंने कहा तुम चले जाओ मेरी नजरों से दूर, क्योंकि मेरे तुम्हें देखते मैं शरीर त्यागूंगा तो जीवन सफल माना जाएगा। इसकी तुलना में माधवेंद्रपुरी के एक और शिष्य थे जिनका नाम था ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की सेवा बड़ी विनम्रता से की, विद ग्रेट ह्यूमैनिटी। उनका मल साफ करते थे, बुरी उम्र में पेशाब साफ करते थे, उनको कंधे में उठाते थे। तो माधवेंद्रपुरी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि माधवेंद्रपुरी ने उनको वर दिया कि तुम सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, जो कि उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो कल माधवेंद्रपुरी का तीर्थ तिथि थी, तो मैंने पूछा था भक्तों से माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई थी, उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा आज सुना देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी यात्रा कर रहे थे, जब वो रेमुना के मंदिर में आए तो भगवान का हार उन पर गिरा, और फिर चैतन्य महाप्रभु को याद आया, हाँ मेरा गुरु, मेरे गुरु ने मुझे एक कथा सुनाई थी माधवेंद्रपुरी की। तो माधवेंद्रपुरी का के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी दृढ़ होकर चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति में जुड़ें और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चैतन्य महाप्रभु को सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार माना जाता है। हाँ, पतित पवन हेतु तव अवतारा, मोह समा पतित प्रभु ना पाई बिहारा। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, समा बिना के दयालु जगत संसार है। आप सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार हो, और आप अवतारित हुए हो किस लिए, पतितों का उद्धार के लिए। और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आचार्य जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार नाम, जितने नगर हम काम है विश्व में सब जगह हरि नाम होगा। तो आज महाप्रभु जी की कृपा से यह हो रहा है, जैसे संपेय अभी मायापुर में परिक्रम हुआ था नवद्वीप का, तो जब ये परिक्रम नवद्वीप का शुरू हुआ था, जब दो पदल होते थे, एक बंगाली एक बाकी सब, अब ये साल परिक्रम में चार अलग अलग अंग थे, एक था बंगाली पार्टी, एक हिंदी पार्टी, एक रशियन पार्टी, एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी, और कोई 6,000 भक्तों ने केवल नवद्वीप का प्रोग्राम किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है, उनकी भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में हरि नाम पहुंचेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री प्रभुपाद जी को यह आदेश दिया था 1921 में, और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश का आगे प्रचार करेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। आज प्रभुपाद जी की कृपा से हरि नाम की महिमा दिन पे दिन तेजी के साथ क्या हो रहा है जानते जा रहे। तो हम सब में भी यही भाव होना चाहिए कि हम महाप्रभु जी की शिक्षा को स्वीकार करें और इसका कीर्तन करें। बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण गुरु कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु जी का आदेश था, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। और कृष्ण की शिक्षा क्या है, जो कि गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों में है। चैतन्य महाप्रभु की, माधवपुरी की, और प्रेमानंद। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? यस यस सम क्वेश्चन। हम लोग ठीक है, अभी समाप्त नहीं हुआ, 5 मिनट और। हाँ, यू हैव अ क्वेश्चन? हम लोग
हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज फॉर नाइस एनलाइवनिंग लेक्चर ऑन माधवेंद्र पुरी पास टाइम्स। इन द कोर्स ऑफ लेक्चर यू मेंशन दैट मुस्लिम्स व्हेन दे अटैक्ड देयर टेम्पल्स दे हैव हिडन द डीटीज एंड ऑल। सो इन द कोर्स ऑफ आवर लेक्चर्स आउटसाइड व्हेन वी मेंशन दिस सम पीपल दे आस्क द लॉर्ड हिमसेल्फ दे कैन नॉट प्रोटेक्ट द टेम्पल्स। So how will he protect you like that? So what answer we should give?
We should give the answer that the Lord is dependent on his devotees. The Lord is complete in all respects. He doesn't need any assistance from any of us. Just like we offer prasad to the Lord 8 times a day. The Lord is Om Purnam Adha Purnamilam. But he gives us the privilege and the facility to engage in service for our own purification. So, the Lord is dependent on his devotees for protection, and we have to use our intelligence how to protect the Lord. The Lord is giving us an opportunity to serve him and use our intelligence. Yeah? Of course, some of those who want to argue, doesn't matter what you say, they'll argue. Essentially, it all boils down to having faith in the scriptures. And the instruction of the scriptures is, the Lord gives us an opportunity to engage in service for our own purification. Yeah? Yes, sir.
What was the mantra before Lord Chaitanya gave Hare Krishna Maha Mantra?
Hare Krishna Mantra is there in the Shastras and times immemorial.
No, but Ishwar Puri, Madhavendra Puri, his guru, they were chanting Hare Krishna Maha Mantra,
yes,
or some other mantra.
Madhavendra Puri was chanting Hare Krishna Mantra.
And before that, up to Narad Muni.
Guru Nanak?
Up to Narad Muni.
Up to
Narad Muni.
Up to Narad Muni.
Which was the mantra down the line?
Well, there were different mantras at different times. I can't tell you exactly which mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya was chanted by Dhruva Maharaj when he went to practice austerity. But the mention of the Hare Krishna Maha Mantra is there in the scriptures, which traces back 5,000 years. And Madhavendra Puri, in the Chaitanya Charitamrita that is said, was totally absorbed in chanting the Hare Krishna Mantra.
If suppose somebody recites the name of Lord Shiva at the time of death, where does he proceed to?
It will depend upon many factors, such as how his life was executed, or just at the moment of death he chanted, or whether he was chanting throughout. You know, there are various factors. So, if he's been a devotee of Lord Shiva, he get a higher birth and again the opportunity to render service to Krishna. Krishna says very clearly, unless you surrender to me, mama vidyat kaunti apana janmana vidyate, unless you surrender to me, you cannot become free from the cycle of birth and death. Okay, anything else? Vishwam Rajani? Hare Krishna. Tomorrow also, Rajani? What, 8 o'clock?